रश्मि ने जाते हुए रेहान की बांह पकड़कर उसको वापस अपनी तरफ घुमाया और उसके करीब चली गई। रेहान कुछ समझ पाता, इससे पहले ही रश्मि ने उसके लबों को अपने लबों से कैद कर लिया। रेहान को रश्मि से ऐसा कुछ करने की कतई उम्मीद नहीं थी, वो तो आंखें फाड़े उसको देखता ही रह गया। उसके दोनों हाथ हवा में थे, शरीर जैसे उस पल में जम सा गया था और दिल वो तो इतनी जोरों से धड़कने लगा था जैसे अभी उछलकर बाहर आ गिरेगा। रश्मि की सांसें भी ऊपर नीचे हो रही थीं। अपने पंजे पर खड़ी उसकी गर्दन पर अपनी बाहों का पहरा बनाते हुए वो उसके लबों को चूम रही थी। पलकें आधी झुकी हुई थीं और अपनी अधखुली आंखों से वो रेहान के चेहरे के भावों को देख रही थी। कुछ सेकंड के किस के बाद उसने रेहान के लबों को आज़ाद किया और पीछे हटते हुए गुस्से से चिल्लाकर बोली, कितना बोलते हो तुम, इतना तो लड़कियां भी नहीं बोलती। एक बार जो शुरू हुए तो मुझ पर चिल्लाते ही चले गए। अरे अपना मुंह बंद रखोगे तभी तो सामने वाला कुछ कह पाएगा। पहले जी भरकर मुझ पर चीखे और फिर बिना मुझे अपनी बात कहने का मौका दिए चल पड़े वापस। कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखाने लगे हो बेटा। अपने स्वैग को जरा कंट्रोल में रखो, वरना तुम्हारे इस एटीट्यूड के साथ साथ तुम्हारी भी चटनी बनाकर रख दूंगी, समझे? और क्या कहा था तुमने, बहुत से जरूरी काम है तुम्हारे पास, तो मैं क्या तुम्हें वेल्दी दिखती हूँ? मुझसे ज्यादा जरूरी और कौन है तुम्हारे लिए? इतना क्या भाव खा रहे हो तब से? कुछ देर शांति से मेरी बात नहीं सुन सकते? तब से देख रही हूँ बस बोले ही जा रहे हो। एक तो इतनी मुश्किल से तुमसे वो बात कहने की कोशिश कर रही हूँ और तुमसे दो मिनट शांत रहकर मेरी बात नहीं सुनी जा रही। अब बोलो, चुपचाप यहाँ खड़े होकर मेरी बात सुनोगे या मुझे तुम्हें रस्सी से बांधकर तब अपनी बात कहनी पड़ेगी? रेहान तो उसके किस के वजह से पहले ही सदमे में था। अब तो वो आंखें फाड़े और अपने लबों पर हाथ रखे हैरानी से उसको देखने लगा। रश्मि ने अपनी बात कही, फिर जवाब के लिए उसको देखा तो उसके लबों पर रखी हथेली देखकर चिढ़ते हुए बोली, मुंह पर हाथ धरे क्या खड़े हो? एक किसी किया है, कोई तुम्हारा रेप नहीं कर दिया जो ऐसे आंखें फाड़े मुझे घूरे जा रहे हो? तुमने भी तो मुझे किस किया, मैंने तो तुम्हें ऐसे नहीं घूरा था कि आंखों से तुम्हें साबुत निगल जाऊं। चलो हाथ हटाऊं अपने मुंह से और कहो कि अब तुम शांति से मेरी बात सुनोगे और जब तक मैं नहीं कहती यहां से एक इंच हिलोगे भी नहीं। रेहान को तो शौक पर शौक मिल रहा था। आज रश्मि के तेवर जानलेवा थे और उसका शिकार बेचारा रेहान बन रहा था। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है, किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है रश्मि उससे, आखिर वो करना क्या चाहती है। रश्मि भड़की हुई थी तो बेचारे ने शांति से हाँ में सर हिला दिया। कहो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे, मैं तुम्हारी बात को शांति से सुनूंगा और जब तक तुम नहीं कहती यहाँ से कहीं जाऊँगा भी नहीं, पर ज़रा जल्दी कहना, लंच ब्रेक ओवर होने वाला है। रेहान ने उसका ध्यान समय की तरफ खींचा। रश्मि के पास अब वक्त कम था, उसने पहले तो अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें ली। अब वो कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। कल से जो जंग खुद से लड़ रही थी उसकी वजह से वो चिड़चिड़ी हो गई थी। वहां तो मजबूर थी तो कुछ कह नहीं पाई, पर अपनी फ्रस्ट्रेशन गुस्सा उसने काफी हद तक रेहान पर निकाल दिया था। अब दिमाग कुछ शांत हो चुका था। कुछ सेकेंड बाद उसने अपनी पलकें उठाई तो रेहान खामोश खड़ा उसे ही देख रहा था। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं। रश्मि की परेशान निगाहें रेहान पर जा टिकीं। वहीं रेहान ने उसकी बात सुनी तो पहले तो वो चौंक गया, फिर बिना किसी भाव के बोला, तो कर लो, मैंने तुम्हें रोका तो नहीं। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं उस चपड़ गंजू को देखना भी नहीं चाहती, पर मम्मी पापा ने उसे आज शाम को मुझे देखने के लिए घर बुला लिया है और मुझे उससे मिलने को कहा है। मैं चाहते हुए भी उन्हें मना नहीं कर सकी। उसने अपनी परेशानी की वजह उसे बताई। उसकी बात सुनकर रेहान को अपने दिल के टूटने के दर्द का एहसास होने लगा, पर उसने उस दर्द को चेहरे पर नहीं आने दिया और भावहीन सा बोला, तो तुम ये मुझे क्यों बता रही हो? अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो या तुम्हें इस लड़के से कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें ये बात जाकर अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए। तुम्हारे लिए लड़का वो ढूंढेंगे, मैं नहीं। रश्मि ने उसका जवाब सुना तो एक बार फिर उसके अंदर का गुस्सा बाहर आने के लिए हिलोरे मारने लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, मुझे तो लगा तुम ही मेरे लिए लड़का ढूंढोगे, तो पहले तुम्हें ही बता दूं कि मुझे किसी भी अरे घरे नत्थू खैर से मिलने या उससे शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके बाद अपने मम्मी पापा को भी बता दूंगी। उसकी बात रेहान के सर के ऊपर से चली गई। वो एक बार फिर आंखें बड़ी बड़ी करके हैरान परेशान सा उसको देखने लगा, जैसे उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। रश्मि के सब्र का बांध अब टूट कर उसके गुस्से के आवेग में बह गया और उसने आगे बढ़कर रेहान का कॉलर पकड़कर उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए गुस्से से कहा, कल से मेरा दिमाग घूमा हुआ है और तुम्हारे वजह से अब वो गुस्से से बस फटने ही वाला है। इंसान हो या गधे, इतना हिंट दे रही हूँ फिर भी तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? कहीं तुम जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए नासमझी का नाटक तो नहीं कर रहे? सब समझते हुए भी अनजान बन रहे हो ताकि मुझसे बदला ले सको। हाँ तुम तो बिजनेसमैन हो ना, हिसाब के एकदम पक्के। मैंने तुम्हें इतना सताया है, उसी का बदला ले रहे हो मुझे तड़पा कर। तुम्हें तो वैसे भी आदत है ना मुझे परेशान करने की, तो जब इतना अच्छा मौका खुद चलकर तुम्हारे पास आया है तो तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। मिस्टर रेहान अग्निहोत्री, मैं तुम्हें ये पहली और आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा बेहूदा मजाक करके मुझे और परेशान करना बंद करो, वरना मैंने तुम्हारे नाम की तरह तुम्हें अग्नि के हवाले कर देना है। बेचारे रेहान का उसने लगभग गला ही दबा दिया था, और वो समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर रश्मि उस पर इतना भड़क ही क्यों रही है। उसने रश्मि के हाथ को अपने कॉलर पर से आते हुए परेशान होकर सवाल किया, चाहती क्या हो तुम मुझसे? ये साक्षात चंडी का रूप धरकर मेरे ऊपर क्यों चढ़ी जा रही हो? अगर मुझे मारने का इरादा है तो पहले मेरा कसूर तो बता दो कि किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। ऐसा क्या कर दिया मैंने कि तुम मुझ पर इतना भड़की हुई हो? उसका सवाल सुनकर रश्मि ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ उसको देखा और दांत पीसते हुए बोली, नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने तुम जैसे बेवकूफ़ बंद बुद्धि आदमी से प्यार किया। सारी दुनिया में मुझे भी एक तुम ही मिले थे अपनी किस्मत फोड़ने के लिए। ज़रा भी अकल तो है नहीं, पता नहीं बिजनेसमैन कैसे बन गए, या सिर्फ मेरे सामने ही तुम्हारी सारी इंटेलिजेंस नर्क लोग घूमने चली जाती है ताकि तुम मेरा दिमाग खाकर मुझे पागल कर सको। मेरे ही नसीब फूटे थे जो मुझे तुम जैसे झंडू से प्यार हो गया, जिसको मेरे इतना समझाने के बाद भी कुछ समझने नहीं आया। मैंने तुम्हें किस भी कर लिया फिर भी तुम्हारे दिमाग पर पड़े पत्थर नहीं हटे। मुझसे पूछ रही हो कि मैं तुम्हें अपने रिश्ते की बात क्यों बताने आई? अरे अव्वल दर्जे के मूर्ख आदमी, इतना सा दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर की ये समझ कि मुझे किसी और से नहीं तुमसे शादी करनी है। इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मुझे कोई और उड़ा कर ले जाएगा, और मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है। तो इससे पहले कि मैं अपने पेरेंट्स की खुशी के आगे मजबूर हो कि उनकी पसंद के लिए मंजूरी दे दूं, जाकर उनसे मेरा हाथ मांग लो। टू बी कंटिन्यूड।